ओम शांति। तो हमें भी आप माँ समान यहाँ पालना दे रही हैं। लगातार आप देख रहे हैं हमारी हर बात का, हमारी व्यवस्थाओं का, पूरी भट्टी की क्लासेस का, एक एक से संपर्क करना, तो नीचे मतलब शांतिवन से लेकर के लगातार आप मेहनत कर रही हैं। जबकि आपको बताया गया था कि ग्राम देवी में गोल्डन जुबली का प्रोग्राम था, जहां दादी जी खुद जाने वाली थी, और आप मुंबई मलाड से ही हैं। आप मलाड सेवा केंद्र की आप प्रमुख हैं, आपके साथ में 3-4-5 सेवा केंद्र और भी संभालती हैं, लेकिन चूंकि वहीं मुंबई में ही गोल्डन जुबली का प्रोग्राम है, दादी आ रही है, उस सबको सेक्रीफाइस करके जब आपको मुन्नी बहन जी ने ये सेवा का दायित्व सौंपा कि भट्टी को कोऑर्डिनेट करना है आपको नीमच ग्रुप की, तो बहन जी ने सहर्ष स्वीकृति दी। इसलिए एक बार केवल एक हाथ की ताली नहीं, दोनों हाथ की ताली बजाएं। और बहन जी की विनम्रता और बड़प्पन भी आप देखिए कि बार बार शशि बहन जी भी कह रही हैं आप क्लास कराइए, आप क्लास कराइए। बड़ी मुश्किल से हमने आग्रह करके बहन जी का अनुभव की क्लास हमको मिली है। मैं भी लगातार 2 दिन से आग्रह करता रहा, तब बहन जी ने हाँ भरी कि आज हम सब भाई बहनों से अच्छे से मिलेंगे, आपका विषय नियम और संयम रहेगा। आपको बता दें कि हमारी मीठी बहन जी ने साकार बाबा की पालना ली है, ये की एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है, बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन। जिसने भी साकार बाबा की पालना ली है वो अपने आप में एक विशिष्ट विभूति है, क्योंकि संसार के सर्वश्रेष्ठ महामानव के साथ सर्वोच्च मानव, बल्कि ये कहें कि कहीं कहीं तो भगवान से भी हम, मेरे को तो जब ब्रह्मा कुमारी में बाबा के ज्ञान में पहली बार आया तो पहले ब्रह्मा पे निश्चय हुआ, बाद में शिव बाबा पे निश्चय हुआ। जैसे ही ब्रह्मा को मैंने देखा और ब्रह्मा को सुना और उसका चरित्र पढ़ा, मुझे 1% भी डाउट, लोग ब्रह्मा में पूछते हैं, मुझे कभी डाउट ही नहीं रहा कि यही एक महामानव हो सकता है जो ब्रह्मा हो सकता है। तो जिन्होंने उनकी पालना ली है, जिन्होंने उनके आशीर्वाद लिए, जिनको उनसे दृष्टि मिली है, तो उनको तो मैं समझता हूं कि उनका परिचय देना जैसे दीपक दिखाना सूरज को। बहन जी 1968 से ज्ञान में है, 71 में आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया सेवा के अंदर, और बहन जी ने बॉम्बे में रह करके बड़ी विभिन्न प्रकार की विशिष्ट सेवाएं की। तीनों आर्मी वहां पे, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है और आर्मी भी है, तीनों प्रकार की सेनाओं में आपने लगातार अपनी सेवाएं दी हैं, और उन तीनों प्रकार की सेनाओं में आपको विशिष्ट मेडल के द्वारा, अवार्ड के द्वारा, मोमेंटो के द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। बहन जी ने बीएमसी के स्कूल्स वहां चलते हैं बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनके अंदर वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम का एक मुहिम चलाया, और वहां लगातार वैल्यू एजुकेशन के प्रोग्राम बीएमसी के सभी स्कूल्स में रन करते हैं। बहन जी राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर भी हैं। लगातार आप मधुबन से आपका जीवन संपर्क बना रहता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मेंबर को तो हर मीटिंग में, हर उसमें प्रोग्राम में सम्मिलित होना पड़ता है, अपने सुझाव भी देना पड़ते हैं, तो बहन जी लगातार उन सबसे भी जुड़ी रही हैं। आपने इसके अलावा रेलवे के अंदर भी एक जो सब सामूहिक एक साथ प्रदर्शनी का कुछ कार्यक्रम रखा था, उसकी परमिशन भी लेने के निमित्त आप बनी हैं। लगातार बहन जी ने, बल्कि मैं तो ये कहूं कि शायद अगर इनके मोमेंटो रिवार्ड या अवार्ड गिने जाएं तो मेरे ख्याल से मैं एक एक नाम बोलूंगा तो कई प्रकार के आपको अनेक संस्थाओं से आपको अवार्ड और रिवार्ड, ये तो आजकल एक जैसे जो कहां पहले हम तरसते थे और आज ब्रह्मा कुमारियों के सम्मान के लिए लाइन खड़ी हुई है, तो बहन जी के तो सम्मान वो अवार्ड रिवार्ड भी इनके आगे तो तुच्छ लगते हैं, हमारी इतनी बड़ी बहन है। तो इसलिए मैंने कहा कि आज हम बहन जी के मुखारविंद से, और इतनी मीठी वाणी है, इतना बड़प्पन है, मैं लगातार पिछले दिनों से 4-5 दिन से हम संपर्क में है लगातार, लेकिन इतनी विनम्रता, एक इतनी बड़ी बहन में इतनी विनम्रता, ये एक देखने की और सीखने की बात है। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसी कुंती बहन जी का फिर से करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, और हम बहन जी के मुखारविंद से आज हम अच्छे से क्लास करेंगे, आप नियम और संयम पे हमको बहुत सी बातें बताएंगी। ओम शांति।
ओम शांति। धन्यवाद तो आप सभी का है, क्योंकि आप सभी बच्ची करने आए तो हमें मौका मिला है ना, तो ये अरस परस चलता रहता है, आपको हमारे कारण, हमें आपके कारण। वैसे कहते हैं कि एक एक देवी या देवता का दर्शन करने के लिए न जाने कितने मंदिरों में जाना पड़ता है। खैर बचपन में हम तो गए नहीं मंदिरों में, मालूम नहीं है, लेकिन लोग भटकते रहते हैं। और यहाँ एक साथ इतने देवी देवताओं का दर्शन हो जाए, ये कितना बड़ा सौभाग्य है, है? हम कितने मंदिरों में जाने से बच गए क्योंकि यहाँ सारे देवी देवताएं हमें मिल गए, है ना। तो ये देवी देवताएं क्यों देवी देवता बन सके, हम क्यों हमें ये टाइटल मिलता है, इसके पीछे एक रीजन है कि हम हमारी जीवन के अंदर नियम और संयम में चलते हैं। वैसे भी मानव जीवन बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, चाहे वह घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, सर्विस के क्षेत्र पर है, बिजनेस के क्षेत्र पर है, कहीं भी है, उसे नियमों पर चलना ही पड़ता है। कोई भी संसार में स्थान ऐसा छूटा हुआ नहीं है कि जहां हम कहें कि कोई नियम नहीं है, है नहीं, यहां तक कि रेलवे टिकट के भी नियम है, हर छोटी छोटी बातों के भी हैं, क्योंकि नियम ही हमारी जीवन को संयमित बनाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि जहां कायदा है वहां फायदा है, या ये कहें कि मर्यादा ही हमारे जीवन का स्वधर्म है। जितना हम मर्यादाओं में चलते हैं, माने हम हमारे स्वधर्म में स्थित रहते हैं। दूसरी बात ये कहें कि हमारी सेल्फ मैनेजमेंट वह है ईश्वरीय नियम। जितना हम ईश्वरीय नियमों में चलते हैं, माने हम हमारा सेल्फ मैनेजमेंट करते हैं। हर कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलना, ऐसी जीवन जो बनाकर के चलता है और जो सदैव एक बाबा, एक बड़ी माँ और एक ईश्वरीय परिवार, उसमें भी बाबा कहता कि बच्चे एक बाप को याद करो, तो जो एक बाप को याद करता है वही योग है। और ऐसे योग में जब हम रहते हैं तो जिससे हमारे चेहरे पर लाइट और माइट आती है, ये सूक्ष्म शक्तियां हैं, वो सूक्ष्म शक्तियां हमारे अंदर आती हैं, और जहां ये लाइट और माइट आ जाती है वहां हमारा ये संगठन, आपसी संबंध, आपसी व्यवहार वो कैसा होगा, है? प्यार का होगा, स्नेह का होगा। इसलिए बाबा यहाँ पर एक नियम सिखाते हैं कि आपसी संबंध में, आपसी संगठन में, वहां पर आवश्यक होता है मन का मौन। मौन रखना, कहते हैं एक चुप सौ सुख। तो यहाँ बाबा हमें कहता कि बच्चे तुम्हें अंतर्मुखी मन के मौन को धारण करना है, और जहां हम मन के मौन को धारण करते हैं तो वहां हमारा आपसी स्नेह और आपसी प्यार वो बना हुआ रहता है। जहां हम बाहर मुक्ता में आते हैं वहां हमारा कोई न कोई नियम टूटता है, वहां मन मुटाव होता है, मतभेद आता है, किसी की कमियां दिखाई देती हैं, किसी की कमियां वर्णन होती हैं, किसी की कमियां सुनते हैं, है ना। मतलब वहां हमारा स्वचिंतन का नियम टूट करके पर चिंतन, तो नियम टूटा। बाबा ने हमें बताया क्या कि बच्चे स्वचिंतन करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, और हम कर रहे हैं बाहर मुक्ता में आकर के औरों की कमियों का, औरों की बुराइयों का वर्णन। हम मतभेद में आ रहे हैं, दो विचार हमारे हो रहे हैं। तो जहाँ दो विचार आएंगे, जहाँ मतभेद में हम आ जाएंगे, तो वहाँ आप देखो कि क्या हमारा वह प्रेम का किला बन पाएगा, आपसी प्यार का किला वह बन पाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि हमने नियम को तोड़ा। व्यक्ति दुखी कहाँ होता है? जब नियम को अर्थात कायदे को तोड़ता है तो वह दुखी होता है। जहाँ वो अपनी मत या औरों की मत पर चलता है, बाप की श्रीमत का जहाँ उल्लंघन करता है, तो वहाँ वह दुखी होता है। वो प्रेम का किला अपना बना नहीं पाता, संगठन में एक मत होकर के वो चल नहीं पाता। एक छोटी सी कहानी है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार पिताजी ने अपने दो बच्चों को बुलाया, वह राजा थे। तो राजा ने कहा कि इस राज्य से आपको जितनी अशर्फियां चाहिए, माना जितना धन चाहिए, उतना धन ले जाओ। जितने कार्य करने के लिए आपको कार्यकर्ता चाहिए वह भी ले जाओ, और दोनों अलग अलग दिशाओं में जाओ। और दोनों अलग दिशाओं में जाकर के एक सुंदर सा किला बनाओ, एक वर्ष के बाद मैं वह किला देखने आऊंगा। एक ने अशर्फियां भी ली, कार्यकर्ताएं भी लिए, और वह एक दिशा में गया। दूसरे को कहा तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, यानी न धन लिया और न कार्यकर्ता लिए, वह दूसरी दिशा में गया। अपने अपने किले बनाने लगे। एक वर्ष के बाद पिताजी ने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा कि मुझे आपका किला देखना है। तो बड़ा बच्चा तो बड़े उत्साह के साथ कहा कि चलिए पिताजी। और पिताजी गए, देखा, बहुत सुंदर किला बनाया हुआ था। और वह किला देख करके पिताजी ने प्रशंसा भी की कि बहुत सुंदर बनाया। दूसरे को कहा कि तुम्हारा? तो बच्चे ने कहा कि पिताजी, मेरा किला देखने के लिए आपको साधारण वेशभूषा में चलना होगा, आपको इस राजाई पोशाक में नहीं चलना होगा। तो कहा किला देखने के लिए ड्रेस को चेंज करने की आवश्यकता क्या है? जब बच्चों का आग्रह हो जाता है तो पिता मान लेता है। पिताजी साधारण वेशभूषा में गए। जहां जहां से वो गुजर रहे थे, हर व्यक्ति उस बच्चे को बहुत सम्मान दे रहा था, बहुत प्यार दे रहा था। आधा रास्ता हुआ तो पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारा किला कहाँ है? तो बच्चे ने कहा, पिताजी शुरुआत से लेकर के जो आप देख रहे हैं यही मेरा किला है। वो किला कोई बनाता है, उसे कोई तोड़ सकता है, उस पर कोई ईर्ष्या कर सकता है, उस पर कोई वार कर सकता है, लेकिन पिताजी ये प्रेम का किला है जिस पर कोई वार नहीं कर सकता, जिस पर कोई ईर्ष्या नहीं कर सकता। पिताजी ये सबसे बड़ा किला है, प्रेम का किला। तो पिताजी को अपने बच्चे पर नाज हुआ कि इसने जो बनाया वो प्रेम का किला बनाया। तो बाबा भी आज हम बच्चों को कौन सा किला कहता है? हम तो वही बच्चे हैं ना। आज सारी दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं, उन करोड़ों आत्माओं में से आपके आसपास में से एक आप अकेले हैं। ज्ञान में कोई नहीं चल रहा, आप एक अकेले हैं। उस आप एक अकेले ने वह प्रेम का किला बनाया है? जहां हम गुजरे वहां हम सभी से सम्मान प्राप्त करें, सभी से वो प्यार प्राप्त करें। वो तब हो सकता है जब कदम कदम पर हम बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, जब हम अंतर्मुक्ता में रहते हैं जितना आवश्यक है। इसलिए बाबा ने एक और नियम बताया कि बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो। और कल परसों भी हम सुन रहे थे कि घर में से ज्ञान में नहीं आते, किसी ने तो भी सुना है पॉइंट में ना। तो मैं ये सोच रही थी कि घर में से ज्ञान में नहीं आते, उसका रीजन हम खुद है। आज कितने वर्षों से ज्ञान में हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी इन ज्ञान की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब आप बड़े जबरदस्ती से उन्हें सुनाने जाते हैं तो कहते हैं कि आपका ज्ञान आपके पास रखो, हमें मत सुनाओ। यहां तक कि पोते पोतियां इतने छोटे वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं, कहते दादाजी आपका ज्ञान आपके पास रखो, आपको बुरा लगता है ना। उसका भी रीजन कहीं ना कहीं हमने बाबा के नियम को या मर्यादाओं को या शिक्षाओं को श्रीमत को उल्लंघन किया है। तो हम देखते हैं कि मैंने अमृतेले योग तो किया, मैंने मुरली भी सुना, परंतु कहां मेरा नियम टूटा, कहां मेरी मर्यादा से मैं बाहर गई, जिसको आज भी बाबा ने कहा ना, कहीं झूठ बोलना या कहीं अपशब्द अपने मुख से निकलना। कायदे प्रमाणम क्रोध नहीं कहते, कहते तो आपने क्रोध किया, कहते नहीं नहीं मैंने क्रोध नहीं किया, वो तो खाली उसको ऐसे ही बोला, परंतु हमारे मुख से अपशब्द निकला तो सही ना। तो बाबा का नियम क्या है, बाबा की श्रीमत क्या है, कि आपके मुख से ऐसा कोई शब्द ना निकले। तो हमारे मुख से वह शब्द निकला माना, और फिर हम उसको बैठ करके ज्ञान सुनाए तो क्या वो सुनेंगे है? नहीं सुनेंगे ना, इसलिए नहीं सुनते हैं है? कभी कभी हमें लगता कि इतना क्या बाबा मिला है, भगवान आया है, हम इतना निश्चय से चल रहे हैं, हम इतना ये कर रहे हैं, ये लोग सुनते नहीं है। नहीं सुनेंगे। मैं हमारे लौकिक अनुभव एक सुनाती हूँ। यहाँ पर बचपन में ही हम लोग ज्ञान में आए, मैं तो फिर भी थोड़ी 12 वर्ष की थी, परंतु मेरी बहनें एक 9 वर्ष की थी और 2.5-3 वर्ष की थी, छोटे छोटे थे हम लोग, और छोटी उम्र में सारे नियमों को हम पालन करते थे। हमारी लौकिक माता जी बड़ी पावरफुल थी है? वो अमृत वेले उन दिनों हमें उठा करके बिठा देती थी, जबकि हमारी दोपहर की स्कूल होती थी तो दोपहर को नींद नहीं मिलती थी, और हम सोचते थे कि थोड़ा तो नींद मिल जाए, लेकिन वो कहती थी कि हमारा बंधन ऐसे नहीं टूटेगा, हम घर में किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के समय का उनको पता है, इससे सारे विरुद्ध हैं, तो हमें घर में ज्ञान नहीं सुनाना है, हमारी जीवन की धारणाओं से हमें उन्हें ज्ञान में लाना है। वह बात इतने छोटे छोटे बच्चों के समय पर ही हमारी माता जी ने हमें बताया, इसलिए हम अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। याद तक कि एक ही कमरे में माँ बाप बच्चे सब साथ में तो सोते ना है, तो जब पिताजी का चेहरा इस तरफ होता था और हम बैठे हुए तो हम सो जाते थे, कि उनको पता नहीं चलता था कि हम अमृत वेला कर रहे थे। फिर जब पिताजी उस तरफ करवट करते थे माना हमारी तरफ ध्यान नहीं है, हम वापस उठ करके बैठ जाते थे। आप सोचो कितना बंधन होगा, कैसे योग किया वो हम जानते हैं, कैसे सेंटर्स पर हम छिप करके जाते थे, एक तार नीचे पैर से दबाया, दूसरे को हाथ से ऊपर किया और निकल के दूसरे बिल्डिंग में गए, फिर ट्रेन पकड़ो, फिर सेंटर पर जाओ। ऐसे नहीं कि उसी शहर में सेंटर था, आज बहुत है, लेकिन उन दिनों नहीं था। उन दिनों बॉम्बे में सिर्फ 5 सेवा केंद्र थे और बड़ी दूर दूर। ऐसे में भी हमने सेंटर पर जाना कभी मिस नहीं किया, छिप करके भी हम चले जाते थे, मालूम नहीं पड़ने देते थे कि सेंटर के मम्मी गई तो मैं घर संभाल लेगी छोटी उम्र में भी, और मैं गई तो वो नहीं बोलती थी कि बच्ची कहाँ गई है, कहेगी फ्रेंड के पास गई, अभी आ जाएगी। तो बाबा फ्रेंड ही तो है, झूठ थोड़ी बोला है, झूठ बोला। तो एक बार हमने कहा था कि हमको झूठ बोलना पड़ता है कि मैं फ्रेंड के घर पढ़ने जाती हूँ, तो दीदी ने कहा कि कुंती झूठ नहीं है, बाबा फ्रेंड भी है, सखा है ना, तो जब बाबा फ्रेंड है माना हम सच है, हम झूठ नहीं है। वह भी धारणा थी। और तीसरी बात कि कहीं पर भी लौकिक में आना जाना तो पड़ता ही था ना, लेकिन हम इतने छोटे छोटे थे, एक स्थान पर माताजी बिठा करके जाती थी, कहीं दूसरे के घर में तीसरे के पास उसके पास, उनको तो बहुत सारे व्यवहार करने, हमको क्यों भटकने ले जाएगी। तो एक स्थान पर बिठा देती थी, हम बैठे रहते थे, जिस घर में बैठे उन लोगों को बहुत वंडर लगता था कि घंटों बैठे हुए भी हम उस स्थान से हिलते नहीं थे। दूसरा, हमें भूख लगी है कि पानी की प्यास लगी है हम नहीं बोलते थे, यानी भोजन की परहेज इतनी छोटी सी उम्र में। आजकल हम सुनते हैं कि भाई बहन कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि बहन बाहर जाते हैं ना तो खाना ही पड़ता है, रॉन्ग है, हम इतनी छोटी उम्र में नहीं खाया। कितनों के घरों में हम गए होंगे तभी तो, आसपास भी हमारे संबंधी थे उनके घर भी जाते, परंतु पानी तक नहीं पिया। ये बाबा का नियम है कि जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो पहले भले इतनी नॉलेज नहीं थी, खाली शब्दों को पकड़ा था हम लोगों ने, पर लोगों के लिए वह हमारी धारणाएं हो गई कि लोग इतनी धारणाएं करते, इतने मजबूत रहते हैं, इतना इस प्रकार से चलते हैं। और आज बड़े गर्व की बात है कि हमारी फैमिली से 35 से 40 मेंबर ज्ञान में हैं, और एक ही परिवार से हम लोग 6 लड़कियां समर्पित हैं। ये है धारणा, बाहर न खाना न पानी पीना। आप रोज ज्ञान में गए नहीं गए वो उनको नहीं पता, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है धारणा से। आज इतनी छोटी सी उम्र में ये लड़कियां बाहर नहीं खाती, और इन लड़कियों को देखो तो वो हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, कभी इनका चेहरा उदास नजर नहीं आता, कभी ये लड़कियां आपस में बहने होके भी लड़ती झगड़ती नहीं, तो दो बहने हो जाएगा ना। तो वो हमको ये देखते थे कि आपस में ये लोग लड़ती नहीं है, शांति से बैठी रहती हैं, खाती भी नहीं कहीं, पानी भी नहीं पीती, और प्यार से भी रहती हैं। ये धारणा आज इतने मेंबर्स को ज्ञान में लाई। तो कभी कभी मैं सुनती हूँ कि भाई लोग कहते हैं हमें 8 दिन 10 दिन जाना पड़ता है, और हमारा भोजन का ही तो नियम है कि बच्चे तुम्हें बाहर का खाना है नहीं खाना, परंतु मैं 8 दिन बाहर जा रहा हूँ, मैं 10 दिन बाहर जा रहा हूँ, बहन जी मैं क्या करूँ, खाना ही पड़ेगा, है ना। अभी मैं मेरा नहीं, एक दूसरा उदाहरण देती हूँ। आप चांद मिश्रा को पहचानते हैं, जानते हैं? कुछ कुछ जानते होंगे चांद मिश्रा, जो प्रियंका चोपड़ा के बिजनेस सेक्रेटरी है, फिल्म लाइन में जुड़े हुए, उसके साथ उठना बैठना करना, एक्टरों के साथ उनका खान पान कैसा होता है। जब प्रियंका चोपड़ा के साथ भी जाते हैं तो कोई खाने की चीजें टेबल पर रखते हैं तो प्रियंका चोपड़ा खुद उन लोगों को कहती है, देखो कितना चेंज है, वो दूसरों को कहती है इसके लिए ये चीजें नहीं लाना, चांद जी के लिए चीजें ये नहीं लाना, चांद जी के लिए फल धुलाई करके देना, चाकू भी तुम्हारा नहीं लाना, उसके पास है, काट के नहीं देना। कैसे प्रियंका के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, जब जब वो उनके साथ 10 दिन 12 दिन विदेश की टूर पर जाते तो भी कहीं उसने खाना नहीं खाया, वो अपने घर से जो बना हुआ था वही लेकर के जाता था। जब उसने उसकी ये प्रैक्टिकल धारणा को देखा तो वो आज प्रभावित है। वो दूसरों को कहती है कि चांद जी ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं और वो नियमित जीवन वाले हैं, आपका नहीं खाएंगे, पर लोग खुश होते हैं। देखो आठ आठ दस दस दिन वो घर से बनी हुई चीजें लेकर के गए, और कहीं नहीं भी खत्म भी हो जाती है बाहर जाते हैं तो फ्रूट वही लेकर के खाया या दूध पी लिया, कुछ नहीं होता है। हमारे दूसरे भाई हैं, ऐसे कई भाई हमारे पास आते हैं ऐसे, लेकिन कुछ दूसरे भाई हैं, उसको भी अपनी खुद की फैक्ट्री है तो उसके कारण उनको भी जाना पड़ता है, वो भी अपने साथ बनाकर के ले जाते हैं, तो उनके सारी फैक्ट्री पर उसका प्रभाव है कि ओम शांति के हैं, इसका नियम है, ये हमसे मिलने आएंगे परंतु ये हमारे पास खाएंगे नहीं, इनको फ्रूट दे देना। हम जितना अपने जीवन में नियमों में चलते हैं उतना सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव के आधार से वो ज्ञान में चलेंगे हम। अगर किसी ने थोड़ा कहा, बहुत प्यार से बोला ना, बहुत स्नेह से बोला ना, तो मैंने क्या किया, सफेद चावल और सफेद दही, सफेद है ना, मैंने और कुछ नहीं खाया बहन जी, मैंने कुछ नहीं खाया, क्या खाया, सफेद चावल, वो तो सफेद ही है, और दही वो भी सफेद है, तो दही चावल ले लिया और फिर ज्यादा फोर्स किया तो काकड़ी गाजर टमाटर उन्होंने वो काट के सलाद दिया, वो खाया, बराबर। अब मैंने नियम तोड़ा या नहीं तोड़ा, तोड़ा ना। और फिर हम कहते हैं कि बाबा हमें मदद नहीं करता, बाबा फलाने को करता है, इसको करता है, उसको करता है, लेकिन मुझे बाबा मदद नहीं करता और मुझे बाबा के साथ का अनुभव नहीं होता, कहते हैं ना। तो आप सोचो कि कहां से होगा, होगा अनुभव, क्यों नहीं होगा, ना कैसे कहा आपने, पीछे भी ऐसे ऐसे कर दिया, कैसे ना कहा, क्योंकि हमने नियम को तोड़ा। हम युक्तियां रच सकते हैं। हमारी कनेक्शन में एक गांव में सेंटर, उसकी रानी ज्ञान में चलती, सरकार साहब नहीं चलते, आज तो काफी सहयोगी हैं, परंतु वो रानी ज्ञान में चलती, वही रानी जो प्रतिभा पाटिल को भी मधुबन में बाबा से मिलने के लिए लेके आई थी। अब सोचो कितनी बड़ी होगी, कितने बड़ों के साथ उसका उठना बैठना सब कुछ था, लेकिन उसने क्या किया, बाबा के नियम को कभी नहीं तोड़ा। वो जब आती थी सेंटर पर तो हर एक की अपनी अपनी गाड़ियां वो लेकर के आ जाती थी, जब उसके पति को पता चला कि ब्रह्मा कुमारी में चलती है और जबकि मकान उसके पति ने ही ब्रह्मा कुमारी को दिया हुआ, परंतु उसके पति को ब्रह्मा कुमारी पसंद नहीं, मकान दिया सेवा में ठीक है, लेकिन उसको खुद को पसंद नहीं, उनके परिवार को पसंद नहीं, तो रानी छिप छिप करके आती थी, उसने उस रानी की गाड़ी को बेच डाला। कोई बात नहीं, रानी ने भी क्या किया कि लंबा रास्ता चल के आए, इसके बजाय उस गांव में नदी थी, वो अपने घर से नदी के रीति से निकलती थी, दूसरे छोर पर पहुंच जाती थी सेंटर पर, नदी से आई। मैं क्यों सुना रही हूं कि हम कहां कहां नियमों को पालन करने में ढीले हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं, वह नियम हमारा हम छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको आज यज्ञ भी चाहता है, बाबा भी चाहता है, क्यों चाहता है, इन बातों के कारण। तो वो पैदल नदी से आती थी और जाती थी, एक बार उसका पति अपनी गाड़ी से घर जा रहा था, ब्रिज नदी के बीच का ब्रिज पर उसकी गाड़ी, और उसने देखा कि कौन महिला है, लेकिन अभी पैर और हाथ की निशानी से सारा वो ढक के जाती थी, लेकिन पैर और हाथ की निशानी से उसने कहा ये तो वही जा रही है, और जहां वो निकलेगी ना वहां जाके गाड़ी खड़ी करती, ले गए वापस, कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, हमारे घर का खानदान का नाम बदनाम कर रही हो, ये कर रही हो। वो चुप रही, कुछ नहीं बोली, 25-30 लोगों का खाना साथ में बन रहा है परंतु वो नहीं खाती थी, वो नौकरों को बड़े प्यार से अपने हाथ में उसने रखा, वो खुद अपना खाना बनाती थी और खाती थी, कई बार कहते हैं माताएं जैसे कहती है ना, क्या करे बहन बेटे की शादी हो गई, बहू आई, अब नहीं खाओ तो घर में रोज का झगड़ा हो जाएगा। इतने बड़े घर की बहू, उसे सास का, जिठानी का, देरानी का किसकी परवाह नहीं, उसने बाबा के नियम को संभाला। जब भगवान के नियम को संभाला तो देखो अपने आप उसके रास्ते क्लियर होते गए। बड़ी बड़ी पार्टियों में भी पति के साथ गई तो कहां कह दिया मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, कहां उसने कह दिया मेरा दांत बहुत दर्द कर रहा है, मैं नहीं खा सकती, बहुत दांत दुखता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मैं खाली जूस ले लूंगी, बस मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरे को नहीं खाया जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, नहीं खाया, भूखी रही, घर में का साथ भी लेके तो नहीं जा सकती पति के साथ, प्रॉब्लम तो उसको वो भी था, वो भूखी रही लेकिन उसने नियम को नहीं तोड़ा। ये नियमित जीवन, ये हमारे जीवन का एक श्रृंगार है। आज हम थोड़ी सी बात आती है तो हम नियम को फट से, डॉक्टर ने दवाई दी और परहेज तोड़ दो तो बीमारी ठीक होगी, तो हमारे ऊपर भी तो 63 जन्मों की बीमारी है, एक जन्म की नहीं है, 63 जन्मों की बीमारी को हमें अगर मिटाना है तो हमें कितनी कड़ी परहेज करनी होगी। तो क्लास भी मिस नहीं, योग भी मिस नहीं, और तीसरा क्या गया, धारणा, वह धारणा भी मिस नहीं करनी है, ये नियम है हमारा। इस धारणा को भी अगर आपने संभाल के रखा, तीनों बातें जब आपने संभाली तो चौथा क्या होगा, चौथा विषय सेवा। तो सेवा करनी नहीं पड़ती है, सेवा स्वतः हो जाती है। जहां तीन मजबूत है तो चौथा कहां जाएगा, वो अपने आप जुड़ जाएगा। देखो आप चार लोग बात कर रहे हैं, तीनों की एक मत हो गई है तो चौथा क्या कहेगा, क्योंकि मेजॉरिटी है ना, चलो मैं भी करता हूं। तो ऐसे ही हम भी जब बाबा के ज्ञान, योग और धारणा तीन बातों पर अटेंशन रखते हैं तो चौथी सेवा मुझे वाणी से नहीं करनी पड़ती है लेकिन मेरे जीवन से हो जाती है। और हमारा चेहरा हमेशा खुश रहेगा, रखना नहीं पड़ता है लेकिन हमेशा खुश रहेगा क्योंकि मैंने बाबा की श्रीमत को पालन किया है। चेहरा उदास कब होता है, मुरझाता कब है, तो कहेंगे इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, कोई कुछ नहीं करता है, जो कुछ करते हैं वो हम करते हैं। मैं कहती हूँ मेरे साथ में रहने वाली बहन है ना, वो मेरे को हमेशा टोंट मारती है, हमेशा ऊपर नीचे बोलती है। हम बिजनेस में रहते हैं ना, हम ब्राह्मण परिवार में आते हैं, मुरली सुनने आते हैं ना, तो वो मेरे को ऐसा कह देता है, कोई नहीं कहता है, कौन कहता है, हमारी गलतियां, हमने क्या गलती की है उसका रिटर्न तुरंत हमको कोई ना कोई रीति से मिलता है। तो तुरंत आप चेक करो कि बाबा के किस नियम को ज्यादा नहीं अंश मात्र भी मैंने तोड़ा है, अंश मात्र भी अगर मैंने नियम को कहीं तोड़ा है तो उसका रिटर्न मुझे वहां पर उस रीति से मिलता है। और अगर नहीं तोड़ा है तो मेरा चेहरा खुश है, हम खुद महसूस करते हैं कि मेरे अंदर इतनी शक्ति, मेरे अंदर खुशी, मेरा मन शांत, मुझे वो गवाही देता है, क्यों? और हमारे चेहरे से सामने वाला भी खुश होकर के जाता है ना, क्योंकि हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा तो सामने वाला भी क्या होगा। एक छोटी सी कहानी फिर सुनाती, कहानी में नींद कम करेंगे ना। एक बार एक गुरुजी ने दो शिष्यों को बुलाया, दो शिष्यों को बुला करके दोनों को अलग अलग फूल की टोकरी दिया, दोनों को अलग अलग फूल की टोकरी देकर के कहा इस फूल को आप उस व्यक्ति को देना जिसके चेहरे पर खुशी हो, मुस्कुराहट हो, उसको यह फूल देना। दोनों अलग अलग दिशा में गए, एक फूलों की टोकरी लेकर के गया, वापस लेकर के आ गया जैसी थी वैसी। दूसरा गया वो खाली टोकरी लेकर के आया। जब गुरुजी के पास दोनों शिष्य आए तो एक की खाली एक की भरी हुई। तो जिसकी भरी हुई थी उससे पहले पूछा गुरुजी ने, गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी टोकरी में फूल वैसे के वैसे हैं, क्या बात है? तो कहा गुरुजी, कलयुग की दुनिया, दुखों भरी दुनिया, समस्याओं की दुनिया, लोगों के चेहरे पर खुशी कहां से होगी? लोगों के जीवन में तो टेंशन ही टेंशन है, इसे सारे दुखी नजर आए मुझे, इसलिए मैंने यह फूल किसी को भी नहीं दिया। दूसरे को कहा, तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारी खाली कैसे हो गई? तो कहा गुरुजी, संसार तो कलयुगी दुखों का है, जो इसने वर्णन किया वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। तो कहा फिर क्या हुआ? तो कहा ये कि पहले मैं मुस्कुराता था तो मुझे देख करके सामने वाला मुस्कुराता था, और जब वो सामने वाला मुस्कुराता था तो मैं उसको फूल दे देता था, समझे? तो खुशी कहाँ है? खुशी कहाँ है? हमारे अंदर है, कहीं बाहर में खुशी नहीं है। ना प्रकृति के साधनों से आपको मिलेगी, ना व्यक्ति से मिलेगी, कहीं से खुशी नहीं मिलेगी। जैसे ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, हम कहते हैं ना सात गुण, ऐसे ये खुशी ये आत्मा गुण है, वो हमारे अंदर ही है। सिर्फ हमें अज्ञान के पर्दे को हटाने की आवश्यकता है, और जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है हमारे चेहरे पर खुशी आती है, और सामने वाला भी हमको हंसता हुआ देख करके वो थोड़ा भी मुस्कुरा देता है। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे औरों को खुशी बांटो, हम कहते लाएं कहां से, हैं? खुशी बांटो, खुशी बांटो, शुभ भावना करो, शुभ कामना करो, मेरे कोई बड़ी मुसीबत है मैं दूसरों को क्या दूं, हैं? नहीं देखो आपको कितनी लग रहा है ना कि भाई है ही नहीं हमारे पास, स्टॉक ही नहीं है, और बाबा कहते ये स्टॉक रखो। और गुलजार दादी क्लास में कहती है खुशी बांटने में कोई खर्चा नहीं होता है, खुशी बांटने में कोई मेहनत नहीं होती है। अरे तो बांटे कैसे? नियम और मर्यादा में चलने वाले व्यक्ति के अंदर अपने आप खुशी होती है। जैसे आप प्रदर्शनी अच्छी समझा करके आ गए, या किसी नए व्यक्ति को आपने समझाया और वो सेंटर पर आया, आपको कितनी खुशी होती है? बड़े प्यार से, बड़े उमंग उत्साह से जो आपके निमित्त बहने या भाई है, आप उन्हें कहते हैं हमने उसको ऐसा समझाया, ऐसा बोला, ऐसा बोला, देखो वो आ गया है, जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार डाला है ना। वो चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन होती है ना। ऐसे ही क्या मैं अगर जीवन के अंदर नियम में चलूं तो मुझे खुशी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। हम वो कोई पंखे और लाइट थोड़े ही है कि जो स्विच ऑन करो स्विच ऑफ, हमारा भाई नहीं करता रहता है, लाइट बंद कर दिया लाइट चालू कर दिया, पंखा बंद किया चालू किया, माइक का बटन बंद किया चालू किया, सारे स्विच ऊपर करो नीचे करो। तो हमारे भी स्विच है क्या? यहाँ पे है स्विच कि हम जिसको दबाएं तो खुशी आ जाए। आजकल कई फाउंटेन भी ऐसे निकले हैं कि बटन दबाओ तो फाउंटेन अपने आप है, और इतना आनंद आता है उस फाउंटेन को देखने के लिए, पर हुआ कैसे? बटन से, बटन बंद कर दो तो सा हाइला बंद कर दिया। तो हमारे इधर भी क्या हमने स्विच डाले हैं? हैं? डाले हैं क्या? किसी ने डाला हो तो हाथ खड़ा कर सकता है? कोई नहीं। देखा स्विच है, स्विच है नियम, नियम का स्विच जब ऑफ हो जाता है तो हमारी खुशी, और जब नियम का स्विच ऑन होता है तो खुशी, तो खुशी रहती है। यानी सारा दिन ज्ञान का मनन और चिंतन, सुबह को जब हम उठते हैं योग में बैठते हैं तो उसी समय हम ये नयों को सुनाते हैं, आप तो पुराने हैं, हम नयों को कहते हैं कि जब आप सुबह को उठते हो ना, तो आज आप सोचना कि मुझे 10 व्यक्तियों के गुण लिखने हैं, अच्छी बातें लिखनी है। तो वो किसमें बिजी होगा? अच्छी बातें, मुझे आज 10 की अच्छी बातें लिखनी है। वो उसी को ढूंढने में लगेगा तो उसको किसी की बुराई नजर आएगी नहीं, क्योंकि इसने चश्मा कौन सा पहन लिया? अच्छाई का। अच्छाई का चश्मा पहना ना, कि मुझे आज 10 लोगों की अच्छी बातें लिखनी है। फिर हम दूसरे दिन उनको दूसरा होमवर्क किसी प्रकार का देते हैं कि भाई कल अच्छाई की ये बात लिखी ना, आज उनकी इन बातों को आप देखो कि इसमें कौन सी कला है। तीसरे दिन उसकी विशेषता देखो, चौथे दिन उसके गुण देखो। तो बुद्धि किसमें बिजी? अच्छाई, गुण, विशेषता, कलाएं, है ना। तो वो उसमें बिजी रहा तो ये मन बुराई में कभी जाएगा, किसी की बुराई नजर आएगी नहीं, और ये मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलेगा नहीं, नकारात्मक बातें उसके मन के अंदर आएगी नहीं। एक छोटी सी कहानी और सुनाते हैं। एक बार गौतम बुद्ध और उसका शिष्य सैर करने के लिए निकले थे। तो सैर करने जब गए तो रास्ते में बुद्ध जी को प्यास लगी और उसने अपने शिष्य को कहा कि ये जो झील है उस झील से पानी लेकर के आओ। वो जाता है और जाकर के देखता है कि झील में गंदा पानी है, कीचड़ा पड़ा हुआ है। वो लौट करके आता और कहता है, गुरुजी वहां तो बहुत मैला गंदा पानी है और कचरा भी बहुत है। फिर गुरुजी कहते, नहीं मुझे प्यास बहुत लगी है, तुम वापस जाओ। वो वापस जाकर के देखता है, वापस आता है। तीसरी बार जाता है, वापस आता है। तो कहते, गुरुजी आगे झील मिल जाएगी ना, यहाँ है तो थोड़ा आगे भी तो मिल जाएगी ना, तो वहां पानी पी लेंगे। तो कहा, नहीं मुझे इसी झील का पानी पीना। चौथी बार जब वो जाता है तो अंदर ही अंदर प्रार्थना करता हुआ भगवान से जाता है और शुभ संकल्प करते जाता है कि अभी तो ये झील का पानी साफ होना चाहिए, मैं गुरुजी के लिए लेके जाऊं। देखो संकल्प करता हुआ गया और जाता है तो देखता है कि वह गंदा पानी बिल्कुल साफ हो गया और उसमें कीचड़ा नहीं है, वो पानी बिल्कुल साफ, और वो गुरुजी के लिए लेकर के गया। तो कहा, ये कैसे साफ हुआ? गुरुजी ने शिष्य से कहा, कैसे साफ हुआ? तो कहा, मालूम नहीं, साफ था और मैं ले आया। मैं तो भगवान से सिर्फ इतनी प्रार्थना किया कि ये पानी अभी साफ कर देना, मुझे गुरुजी की प्यास को बुझाना है, ये पानी साफ कर देना। तो कहा कि बस आवश्यकता है शुभ संकल्प करने की। हम भी सब झील हैं, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। हम सारा दिन अगर ऐसा करते रहेंगे तो वो सामने वाला मेरा साथ व्यवहार कैसा करेगा? करेगा ना, वैसा ही करेगा। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि नहीं ये अच्छी है, ये अच्छा है, ये मेरे साथ अच्छा बोलते हैं, ये मेरे साथ अच्छा चलते हैं, भले नहीं भी चलते हैं, मालूम है मुझे नहीं चल रहे हैं, तो भी क्या होगा? समय लगेगा उसके शिष्य की तरह चौथी बार जाने में नहीं, वो 15 मिनट के अंदर 4 चक्कर लग गए होंगे, पर हमारा 15 मिनट में नहीं, परंतु समय जरूर लगेगा उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा और वो आपके साथ अच्छी तरह चलेगा। मेरा अनुभव सुनाती हूँ। ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो हम ऐसा न समझें कि किसी के पास कोई परिस्थितियां नहीं आती हैं। ब्रह्मा कुमारी जीवन बन गई, हम समर्पित हो गए, बाबा के हो गए, बाबा हमारी जीवन को चला रहा है, माना हम एकदम नहीं। जब हमारे में कोई कलाएं आ जाती हैं, विशेषताएं आ जाती हैं, गुण आ जाते हैं, कई बातें बाबा हमारे अंदर भर देता है, वो सब भर देता है, तो वहां ईर्ष्या भी तो जागृत होती है ना, होती है ना। जब आप दो कदम आगे बढ़ोगे तो कोई नीचे खींचने वाला भी तो मिलेगा ना, कोई भी बात होगी, हो सकता है, है? हमारे साथ भी इसी प्रकार से कुछ हुआ और बिना कारण के, कोई ऐसी बात नहीं, कभी इस प्रकार से कुछ हुआ नहीं और आश्चर्य की बात हो गई कि कुछ ऐसा बन गया। वो मैं नहीं बताती क्या बना, लेकिन बनता है, परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति आ गई। तो जब वो बात दादियों को भी पता चली और दादियां बिल्कुल हमारे साथ थी, तो किसी ने मेरे से पूछा कि अगर वो बहन आपको मिले तो क्या आप उससे ओम शांति करोगी, क्या आप उससे बात करोगी, तुम उससे बात करोगी, वो बड़ी है, तुम छोटी हो, तो क्या उनसे तुम बात करोगी। मैं कहा बिल्कुल करूंगी। तो कहा तुम ओम शांति करोगी। मैं कहा मैं बिल्कुल करूंगी। तो कहा तुम कैसे करोगे। मैंने कहा मेरा मन साफ है, वो करे ना करे उसकी मर्जी, वो मेरे प्रश्न का जवाब दे या ना दे वो उसकी मर्जी, लेकिन मैं करूंगी। और अनायास हुआ ऐसा, यही पांडव भवन का, जिसे चांदनी चौक हम कहते हैं, जहां हम रात को मिलते हैं, बैठते हैं, इसी मैदान में, उस बहन का एक दिन पहले पूछना और दूसरे दिन इसी मैदान में, यही मधुबन की धरनी है, यही चांदनी चौक है, और उस बहन का सामने से आना और देखना। मैंने ओम शांति कर दिया, जिस बहन ने पूछा था वो भी वहीं थी, और पहले मैंने ही बोला ओम शांति, आपकी तबीयत कैसे है, क्योंकि मेरे से बड़े हैं तो मेरा फर्ज है, तो मैंने पूछ बैठी कि आपकी तबीयत कैसे है। वो सोच में पड़ गई कि शायद ये नहीं बोलेगी, है? तो उसने कहा ठीक है, उसने भी ओम शांति का जवाब दिया। जब वो अलग हो गई, मैं अलग हो गई, तो उसने कहा कि कुंती तुम तो इतना निर्माणता से पूछी जैसे लगा ही नहीं कुछ। मैंने कहा मेरे मन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, ना उनके अंदर मेरे लिए ऐसी बात है, परंतु ना जाने क्यों ऐसा हो गया, मालूम नहीं। वो बात वहीं हुई, कितने वर्षों के बाद। हमारी बैकबोन थी दादी प्रकाशमणि और दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, ये मेरी बैकबोन थी। ये भी बड़ा बड़ा भाग्य होता है जिनके बैकबोन ये दादियां रही हो, क्योंकि दादियां बचपन से जानती थी और हमारे लौकिक घरों में सारी दादियां आ चुकी हैं, ये भी बड़ा सौभाग्य है, जैसे वो जानती थी फैमिली बैकग्राउंड को। और मेरे जीवन से भी कभी अचानक सेवाओं में कभी भी बुलाया तो मैंने ना नहीं किया, अचानक। मुझे याद है बड़ी दादी ने एक बार अचानक कहा था कि इसको भेजो, तो मेरे को दीदी ने कहा कि जाएंगे, मैं कहा हाँ। मैं 2 घंटे के अंदर बॉम्बे से तैयार होकर के ट्रेन पकड़ी और यहाँ पहुंची, 1.5 दिन के अंदर ओम शांति भवन का भी डेकोरेशन करना था और यहाँ का भी डेकोरेशन करना था, क्योंकि मेरे में विशेषता थी। आज मैं नहीं करती, आज हमारी बहनें करती हैं, वो लोग मुझे नहीं आने देती डेकोरेशन में, लेकिन कला है, उस कला के कारण बुलाया और हमने किया। तो दादी हर बातों को जानते थे, इसलिए वो बैकबोन हमारा बने रहे। काफी वर्षों के बाद उस बहन ने हमसे माफी मांगी। तब तक हमको क्या करना पड़ा, इंतजार। मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने नहीं सोचा कि माफी मांगे या न मांगे, वो उसका कर्म। मेरी सच्चाई, मेरी सफाई, धीरज और शांति। धीरज चाहिए, हमारी सच्चाई और सफाई है तो बाबा जरूर मदद करता है। मैंने बाबा के कोई नियम को तोड़ा नहीं है, तो हीरे को परखने के लिए, मिट्टी के मटके को खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? सोने को प्योर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखा कितना सब जानते हैं आप लोग ना? आग में डालना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा, तो हम भी तो वही मटके हैं ना? है? तो भगवान क्या मुझे ऐसे ही ले लेगा, भगवान क्या ऐसे ही बनाएगा, है? नहीं, वो भी परिस्थितियों के आधार से ठोकता है। जितना वो ठोकता है ना उतना बाबा हमको ज्यादा याद रहता है। नहीं, परिस्थिति ना आए और आप योग लगाओ, और जब परिस्थिति आए तब आप योग लगाओ, कितना बाबा किस समय ज्यादा याद रहता है? परिस्थिति में, उस समय श्वासोश्वास हर कदम बाबा बाबा बाबा। एक इंटरव्यू देने जाते तो बाबा बाबा। उस दिन उनका अमृत वेला भी होगा, उस दिन उनकी मुरली भी होगी, उस दिन सम्मान भी होगा, और वहां जब गए गए तब तक बाबा बाबा। भोजन खाते भी कोई पूछ रहा है नमक बमक ठीक है, कहते मुझे नहीं मालूम बाबा बाबा क्या है ना। कितना नियम में पक्का बना, किसने बनाया पक्का? परिस्थिति ने। तो ये दुनिया परिस्थितियों की है। आप सोचते मेरे पास कोई परिस्थिति नहीं है, अरे परिस्थितियों की दुनिया में हम चल रहे हैं, भले मेरे पास नहीं है लेकिन दुनिया की परिस्थितियों को तो मुझे दूर करना है ना। तो मैं कैसे शांति से बैठूं, कैसे मैं नियम में ना चलूं? जब मैं नियम में चलूंगी तो दुनिया भविष्य वाली जो आने वाली दुनिया है वो नियमों वाली दुनिया है, आने वाली दुनिया मर्यादाओं वाली दुनिया है। तो जब मैं नियम में चलूंगी, जब मैं मर्यादाओं में चलूंगी, जब मैं श्रीमत का पालन करूंगी, एक मत होकर के रहूंगी, तब वो एक मत वाली और नियम वाली दुनिया होगी। तो लाने के आधार मूरत हम स्वयं हैं, और हम स्वयं आधार मूरत ही नियमों को तोड़ते जाएंगे, कभी चले कभी नहीं चले तो क्या होगा? सोचो कि आधार आधार थोड़ा सा हिल जाए, ये सारी दीवार है लेकिन एक ईंट निकल गई, धीरे धीरे दीवार क्या होगी? कमजोर होगी ना। एक ईंट निकली तो मैंने एक बार एक नियम का सिर्फ उल्लंघन किया, मैंने कोई रोज नहीं किया, कितनी बार किया? मैंने एक ईंट तो निकाल दिया ना, ये दीवार मजबूत बनते बनते मैंने उस ईंट को निकाल दिया, और वो दीवार को कमजोर बनाने का आधार मैं बने। क्या हम इतनी अपने ऊपर जवाबदारी समझते हैं? हम कहते हैं अरे वो तो बड़े बैठे हैं ना, दादियां हैं, वरिष्ठ महारथी भाई बहने हैं, वो सब कर रहे हैं, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं है, हम तो उनके साथ साथ चल रहे हैं, बाबा स्वर्ग स्थापन कर रहा है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण 8 और हमारी दादियां तो स्टार्टिंग वाली 300, उनमें से 8 गए नंबर तो है? भले हम ये सोचे कि हमारी बड़ी दादियां 8 गद्दियां वही बनेंगी, राइट है, चलो अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ मुझे भी तो आना है ना, परिवार कैसे बनेगा? उन महाराजा महारानी का परिवार कैसे बनेगा? हमारे साथ बनेगा ना। तो अगर मैं ढीली पड़ गई तो आगे मेरा परिवार कैसे बनेगा, है ना? इसलिए अगर मुझे उस परिवार में भी आना है, हम सोचते अष्टरत्न में नहीं, ठीक है, उनके राज्य के दरबार के अंदर हम बैठे, उनके साथ हम खाएं पिए बैठें चलें फिरें, उन लक्ष्मी नारायण के साथ, इतना तो इच्छा है कि नहीं है? 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 इतनी इच्छा है या नहीं है? है ना। तो क्या करना होगा? हमारी दादियां क्या करती हैं? नियमों पर चलती हैं। आपने कभी देखा कि कोई दादियों ने नियमों का वहां भी ऊपर नीचे किया हो? नहीं। कई बार कहते हैं कि उनके लिए बड़ा आसान है, हम तो ग्रस्त में रहते हैं ना, हम तो संसार में रहते हैं ना, इसलिए दादियों के लिए फिर भी आसान है। लेकिन आप जानते हैं कि आपका छोटा सा परिवार और दादियों का इतना बड़ा परिवार, इतने सबको चलाना, आप घर के चार मेंबरों को भी चलाने में नाक में दम आ जाता है। कहते हैं आजकल बच्चे सुनते नहीं, उसका स्वभाव अपना, उसका संस्कार अपना, उसका बोलना अपना, उसका करना अपना, कहाँ कोई मिलते हैं। और उसमें भी आजकल विज्ञान का साधन आ गया, या तो वो मोबाइल पर खेल रहा है या तो कंप्यूटर पर खेल रहा है, आपका सुनता ही नहीं, सुनता नहीं। तो छोटे से परिवार को आप एक नहीं कर पा रहे, बिखरा बिखरा परिवार। और यहाँ दादियों को 10 लाख ब्राह्मणों को मिला करके एक परिवार करके चलना, आप सोचो कैसे कर रही है। वो तब कर पा रही हैं जब उनके जीवन की खुद की धारणा है, खुद की धारणा, इसलिए वो हमको एक कर रही है। दादियों का स्नेह हर बच्चे के प्रति है, वह स्नेह उनको एक करके रखा हुआ है। तो इतना स्नेह से हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, इतना प्यार से एक दूसरे को रिस्पेक्ट हम दे करके चल रहे हैं, इसलिए बिखरा परिवार और यह एक परिवार, अनेक मतें और ये इतना बड़ा परिवार भी होकर के एक मत। फर्क किसका है? नियम, मर्यादाएं और श्रीमत, जो भी शब्द हम कहें, उसके अंदर जो एक्यूरेट है, पंक्चुअल है, यानी नियम और मर्यादाओं का जिनको कदर है, वह एक मत होकर के चल सकता है। वो वहां के वातावरण को, वहां के वायुमंडल को भी वह वैसा बना सकता है। देखो एक अगरबत्ती जलती है इतनी सुगंध कर देती है ना, एक अगरबत्ती, क्या है उस अगरबत्ती में, इतनी पतली काली, हाथ में लो तो टूट जाए, है ना, जान भी नहीं है, नहीं है ना, लेकिन खुशबू कितनी है ना। हम चैतन्य, हम इतने मोटे, हम इतने बड़े, कोई हमको हाथ में उठाए तो टूटने वाले नहीं है, टूटने वाले है नहीं, तो हमारे गुणों की खुशबू क्यों नहीं। वो जड़ में अगर जा सकती है तो हम चैतन्य में वह खुशबू क्यों नहीं। मैं तो कई बार कहती हूँ कि कहाँ भी हम नियम मर्यादा में आगे पीछे हो रहे हैं, माना मेरा निश्चय बाबा में कम है। जिसका पक्का निश्चय होगा ना, वो कभी भी नियम या मर्यादा में आगे पीछे हो ही नहीं सकता। थोड़ा भी वह नियम में आगे पीछे क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, कि बाबा के प्रति निश्चय, स्वयं के प्रति निश्चय, ब्रह्मा बाप के प्रति निश्चय और इस ज्ञान के प्रति निश्चय, हमारी श्रद्धा। देखो बाबा के ज्ञान में, बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा, वो श्रद्धा है वो हमारे अंदर ज्ञान को बढ़ाती है। नम्रता है वो हमें महान बनाती है, है ना, और योग्यताएं हमारे जीवन को निखारती हैं। और जिनके अंदर ये तीनों बातें हैं वो सन्माननीय बन सकता है। उसे सन्माननीय बनने की और कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ बाबा के ज्ञान में हमारी श्रद्धा हो, हमारा निश्चय, बाबा में मेरा निश्चय हो, स्वयं में मेरा निश्चय हो। और दूसरी बात, जिनके साथ भी हम चल रहे हैं, नम्रता। हम कई स्लोगन सुन चुके हैं इसलिए स्लोगनों को जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में मेरी धारणा जो झुकता है वो मान बनता, सुना है। आपके घर में पानी के नल की पोजीशन कैसी है? सबके घर में पानी का नल है ना, पोजीशन कैसी है? ये देखो अभी मैं आपको बताती हूँ। भाई कहेगा माइक निकाल दिया बहन ने, अगर नल की पोजीशन ये है तो क्या होगा? आप गीले होंगे, पानी घर में गिरेगा, कीचड़ कीचड़ हो जाएगी, बराबर। नल की पोजीशन ऐसी है तो आप एक घाघर तो क्या, एक टाकी भी भरो, एक छोटा सा ग्लास भी भरो ना, तो कीचड़ नहीं होगी। माना झुका हुआ नल हर एक की प्यास को बुझा सकता है, और अगर ऐसा खड़ा हो जाए तो वो सबको भिगा सकता है। तो अब मुझे क्या करना है? नम्रता को, नम्रता को धारण किया, माना वो अनेक आत्माओं की प्यास को बुझा सकता है। तो इस बच्ची से हम सभी भी क्या लेकर के जाएंगे? नियम, नियम और मर्यादाओं में हम कदम कदम पर चलेंगे। चाहे कितनी भी बातें हमारे पास क्यों न आ जाएं, लेकिन नियम और मर्यादा, इन दोनों को हम साथी बना करके चलेंगे। और वो साथी तब बनेंगे जब बाबा में मेरा निश्चय, बाबा में मेरी श्रद्धा होगी, और बाबा की बात को कि बच्चे नम्रता के कवच को पहन लो। उस कवच को जब पहन लिया तो हम अवश्य अपने जीवन के अंदर सफल जाते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति।
ओम शांति। बहुत सुंदर क्लास। हम लोग मालवा साइड के हैं बहन जी। हम गांवड़े में कहावत है हमारे पास, कांख में छोरों न गांव में ढिंडोरो, समझे?
कांख न छोड़ो,
कांख में छोरो,
हाँ,
न गांव में ढिंडोरो,
समझा?
मतलब घर में ही बच्चा है, घर में ही छुपा हुआ है, और गांव में ढूंढते फिर रहे हैं उसको चारों तरफ। पिछले दो दिन से हम, मैं और बहन जी मिलके क्लासों के मैनेजमेंट में काफी टाइम खराब कर रहे थे। ये मिला तो वो नहीं मिला, वो मिला तो ये नहीं मिला, हा? और हमारे घर में इतनी अच्छी बहन जी बैठी हुई, इतनी अच्छी क्लास कराने वाली, और बहन जी अपनी क्लास को टालती जा रही, टालती जा रही, टालती जा रही। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी तो और बहनों दो तीन कहानी ने सुना दी, भले एक मिनट में भी ले लूं कहानी, वो सुनी होगी आप सबने भी, कि ट्रेन में एक हीरे का जवाहरी सफर कर रहा था, और उसी ट्रेन में एक चोर भी सफर कर रहा था। तो उसके पास एक हीरे की छोटी सी पोटली थी, चोर की निगाहें उसके ऊपर थी कि जैसे ही ये कहीं उतरे पानी वानी पीने, चाय वाय पीने, और मैं इसकी ये पोटली चुराऊं, बराबर निगाह रखी उसने। लेकिन वो उतरा भी दो तीन बार उतरा, जितने प्लेटफॉर्म आए सब पे उतरा, घुमा फिरा, चाय नाश्ता करके वापस आया, और जब वो जाए चोर ढूंढता रहे उसकी पोटली, मिले ही ना उसको पोटली। आखिर जब अपने गंतव्य पे पहुंचा, वो जिस स्टेशन पे उसको उतरना था, फाइनली बैग लेके उतरने लगा, तो चोर से रहा नहीं गया, बोले भाई साहब अब सच्चाई से मैं बता दूं कि मैं तो चोर हूं, और मैं आपके पीछे जब से आपकी निगरानी कर रहा हूं, वो हीरे की पोटली आपने छुपाई कहां थी? सच सच अब तो बता दो कम से कम। तो बोले जब भी मैं जाता था तू इधर उधर जाता, मैं तेरे बैग में रख देता था उसको, तू सब तरफ ढूंढता था लेकिन अपना बैग तो तू नहीं ढूंढता था।